आहन को बार बार रौनक की ओर देखना अच्छा लग रहा था। वही रौनक जो कान्हा जी की मूर्ति के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी और आंखें बंद करके कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रही थी। उसे देखते हुए उसका ध्यान प्रार्थना में कम और रौनक में ज्यादा था। यही हाल सुमित का था, क्योंकि जब से राधिका ने सुमित से शादी करने से मना किया था, राधिका ने एक बार भी सुमित की ओर नहीं देखा था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, और राधिका का इस तरह से सुमित को इग्नोर करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। और अभी भी रौनक के ठीक बराबर में राधिका आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रही थी और सुमित घूर कर उसे देख रहा था। राधिका को प्रार्थना करते हुए अपने बदन पर सुमित की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन जानबूझकर वो फिर से उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि इस तरह से वो अपना प्यार हासिल नहीं करेगी। और वैसे भी अगर सुमित इसे प्यार नहीं करता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, शायद उसके प्यार में ही कोई ना कोई कमी है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए राधिका ने सुमित से पूरी तरह से बायकॉट कर लिया था। अभी उन सबकी पूजा परफेक्टली कंप्लीट हो गई थी और सभी जोड़ों ने दादाजी और नानी माँ से आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त जो नवयुवक वहाँ आ रहा था उसके गार्ड्स ने तुरंत सबको जाकर वहाँ से हटा दिया था। प्लीज़ आप सब लोग साइड में हो जाइए प्लीज़, ऐसा बोलकर वे सबको साइड में करने लगे थे। वहीं अरमान के लिए ये सब देख पाना नाकाबिले बर्दाश्त था और वो घूर कर उन गार्ड्स को देखने लगा था। हालांकि वो मंदिर में अपनी गन वगैरह साथ लेकर नहीं आया था, लेकिन सभी की आंखों में उस वक्त गुस्सा था कि इस तरह से इनकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को सामने से हटाने की। लेकिन आस्था ने अरमान का हाथ थाम लिया था और उसे मनाते हुए बोली, देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, मंदिर है, कोई आ रहे होंगे प्रार्थना करने के लिए, हमें इस तरह से रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और वैसे भी हमने अभी तक अपनी परिक्रमा पूरी नहीं की है, तो जब तक हम अपनी परिक्रमा पूरी नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर आप सब चाहें तो आप सब जा सकते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान आस्था को घूरते हुए खुद से बोला, लगता है इस लड़की की ज्यादा ही जुबान चलने लगी है, जब पहले ये मुझसे डरती थी तभी अच्छा था, कम से कम इतना तो नहीं बोलती थी। तभी नानी माँ बोली, अरे मेरे बच्चे कैसे बातें कर रही है, हम भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे, और परिक्रमा तो पूरी करनी है। हाँ करो करो, परिक्रमा पूरी करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, तो चलो तुम अपनी परिक्रमा शुरू करो। तब आस्था मुस्कुरा दी और नानी माँ का आशीर्वाद लेकर वो थोड़ा सा मंदिर के बाहर आकर परिक्रमा की तैयारी करने लगी। लेकिन जब वो 26-27 साल का नवयुवक सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था और आस्था थोड़ा परिक्रमा करने के लिए बाहर निकल रही थी, उसी वक्त वो उस नवयुवक से टकरा गई थी और उसने आस्था का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया था, क्योंकि अगर वो आस्था का हाथ नहीं पकड़ता तो आस्था सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। अब आस्था का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ देखकर सभी की चीख निकल गई थी। वहीं अरमान की नज़रें तो सिर्फ उस आदमी के हाथ पर थीं जिस हाथ से उसने आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी आस्था ने जोरों से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो गिर जाएगी, डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब धीरे धीरे जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा ही हैंडसम सा चेहरा था, और वो नौजवान भी अपनी काली आंखों से आस्था को ही देख रहा था और आस्था भी उसे देख रही थी। आस्था को उसमें से किसी भी तरह का अजनबीपन एहसास नहीं हुआ था। अब तभी अरमान ने तुरंत आकर उस आदमी के हाथ से आस्था का हाथ छुड़ा लिया था और आस्था को पीछे करके उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। लेकिन वो लड़का तो बार बार आस्था की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि शायद जो एहसास आस्था को हुआ था वही एहसास उसे भी हुआ था। लेकिन तब तक रौनक, रश्मि, राधिका तुरंत आस्था के पास आ गई थी और उसे संभालने लगी थी। साथ ही साथ आहन आस्था के लिए पानी लेकर आ गया था। वो तभी अरमान ने उस आदमी को एकदम किलर लुक दिया, मानो कि उसे आंखों ही आंखों में कहना चाह रहा हो कि उसकी बीवी से दूर रहना। तभी दादाजी वहां आते हुए चिंता भरी आवाज में बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहू को गिरने से बचा लिया, वरना उसे आज काफी ज्यादा चोट लग जाती। तब उस लड़के का ध्यान दादाजी पर गया और रिस्पेक्ट से बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल जी, वो सेफ है, मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर उसने सीधा मंदिर का रुख किया और जाकर प्रार्थना करने लगा था। वहीं आस्था उसे लड़के को जब तक देखती रही जब तक कि वो मंदिर के अंदर नहीं चला गया। वहीं नानी माँ उस लड़के को अपने सामने देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी और उसने उस लड़के से अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो नानी माँ उस लड़के से बचने की कोशिश कर रही हों। तभी नानी माँ ने आस्था से कहा, बेटी अभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी परिक्रमा किसी और दिन पूरी कर लेनी चाहिए, अभी तो हमें घर चलना चाहिए। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सभी लोग नानी माँ के हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि आस्था तो काफी घबरा गई थी, तो इस हालत में उसे नहीं लग रहा था कि वो शायद अपनी परिक्रमा पूरी कर पाएगी। वेल, नानी माँ के कहने पर जल्दी ही सबने एक नज़र मंदिर की ओर देखकर एक बार फिर से प्रणाम किया और सबके सब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वही आस्था की आंखों के सामने बार बार उस लड़के का चेहरा आ रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन आस्था का दिल कर रहा था कि वो उस लड़के से बातें करे, उससे पूछे कि वो कौन है। लेकिन फिलहाल अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस लड़के को कुछ कह सके, क्योंकि अरमान का चेहरा एकदम डार्क हो गया था। अभी तक वो आस्था के साथ जो हादसा हो सकता था उससे उभर नहीं पाया था। वेल, अभी वो सब लोग सिंघानिया मेंशन पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया था। अब सबके सब घूरकर उस गाड़ी को देखने लगे। उस गाड़ी में से देव बाहर निकला। देव की हालत काफी ज्यादा खराब थी। देव अगली सुबह जब उठा तो उसे एहसास हुआ कि वीर उसकी कैद से भाग गया है, तो वो सीधा उसी हालत में सिंघानिया मेंशन आ गया था। वहां जाकर उसे पता चला कि सबके सब मंदिर गए हैं, तो देव मंदिर की ओर रवाना हो चुका था। अब रास्ते में जैसे ही उसने सिंघानिया मेंशन की गाड़ियां देखी तो फटाफट से उसने गाड़ी को ओवरटेक किया। देव को ऐसे हालात में देखकर सभी गाड़ियों से बाहर आ गए थे। तभी देव अरमान के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया था और गिल्टी आवाज में बोला, बॉस एक गड़बड़ हो गई है, वीर रायचंद मेरी कैद से छूटकर भाग गया है। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि अरमान को एहसास हो गया था कि जरूर वो वीर रायचंद उस अबीर सिंह राठौड़ के हत्थे चढ़ गया होगा। लेकिन अरमान ये नहीं जानता था कि अब अबीर सिंह राठौड़ खुद वीर रायचंद की जान का प्यासा है, क्योंकि उसने आस्था के बारे में गलत सोचा है। उसने आस्था को किडनैप करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अबीर सिंह राठौड़ वीर रायचंद को नहीं छोड़ेगा। और ये बात बताने के लिए उसने जल्दी ही अरमान को फोन कर दिया था, जब देव अरमान के ठीक सामने खड़ा होकर वीर के भागने की खबर दे रहा था। तभी अरमान का फोन बजने लगा और अरमान ने जैसे ही कान पर फोन लगाया, अबीर ने उसे बता दिया कि वीर ने उसकी बटरफ्लाई के बारे में गलत सोचा है, इसीलिए उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब अरमान की फोन पर पकड़ मजबूत हो गई थी, क्योंकि आस्था के साथ गलत करने वालों को अरमान अपने हाथों से सजा देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अबीर सिंह राठौड़ वीर को कुछ भी करे।
वैसे भी अरमान ने वसुंधरा से वादा किया था कि वो उसके बेटे को ऐसी खतरनाक मौत देगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। वहीं दूसरी ओर अमरेश गुस्से से रायचंद विला में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि उसे इस बात की खबर लग चुकी थी कि उसका बेटा इस वक्त फरार है और अरमान सिंघानिया के कब्जे में है। अमरेश वसुंधरा के कमरे का दरवाजा काफी घंटों से खटखटा रहा था, क्योंकि वसुंधरा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन जब वसुंधरा को कैद हुए पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, तब अमरेश ने दरवाजा तुड़वा दिया था, और जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा तो वो हैरान हो गया। वसुंधरा ने अपनी हालत बहुत ज्यादा बुरी बनाई हुई थी। उसके बाल चारों तरफ से बिखरे हुए थे। वो बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। वसुंधरा को इस तरह से देखकर अमरेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भले ही उसने वसुंधरा को ज्यादा दिल से ना अपनाया हो, सिर्फ अभिमान से बदला लेने के लिए उसने वसुंधरा के साथ ऐसी हरकत की थी, लेकिन वसुंधरा समाज की नज़रों में उसकी बीवी थी और उसके बात को उसने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। समाज के आगे वे लोग एक हैप्पी मैरिड कपल थे और एक साथ काफी ज्यादा लोगों के सामने पोज दिया करते थे। सबकी नज़रों में आइडियल हस्बैंड वाइफ बने रहते थे। लेकिन आज वसुंधरा की हालत काफी खराब थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वसुंधरा एक टक सिर्फ वीर की फोटो को देखे जा रही थी। तब अमरेश ने वसुंधरा के कंधों को पकड़कर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अगर आज मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरे उस बेटे अरमान सिंघानिया की जान अपने हाथों से ले लूंगा। अगर वीर तुम्हारे पास आ गया था तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों उसका साथ दिया? हाँ बोलो, जवाब दो। तभी वसुंधरा एक ही लाइन बार बार बोल रही थी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब जैसे ही वसुंधरा ने दीवानों जैसी हालत में इस तरह की बातें लगातार की, अब तो अमरेश का पारा और ज्यादा बढ़ गया था और वो समझ चुका था कि वसुंधरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। फटाफट से उसने एम्बुलेंस को फोन किया ताकि वसुंधरा का मेंटल ट्रीटमेंट करवाया जा सके, और उसे फटाफट अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। वहीं डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए पागलखाने में एडमिट करने की बात कही थी, और अमरेश को तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वैसे भी वो किसी पागल के साथ नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने वसुंधरा को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, और खुद वीर की तलाश में उसने अपने सभी आदमियों को एक्टिव कर दिया था। और उसे जल्दी ही इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वीर अरमान सिंघानिया की कैद से भाग निकला है और अबीर सिंह राठौर के हाथों चढ़ गया है, तो इसीलिए अमरेश अब अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए निकल पड़ा था। वहीं अरमान भी अब देर ना करते हुए मारिया के हाथों सभी लेडीज को घर ले जाने को बोल दिया था, और खुद रास्ते में ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और टाइगर के साथ अबीर सिंह राठौर के मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। और रास्ते में ही उन्होंने अपनी प्राइवेट वैन में कपड़े चेंज कर लिए थे और सभी इस वक्त अपने ब्रांडेड सूट में थे। वेल, अब वक्त आ गया था अबीर सिंह राठौर से सीधे सीधे मुलाकात का। वेल, जल्दी ही वो सब अबीर के पैलेस में पहुंचे, और जैसे ही वे वहां गए तो सभी के सभी हैरान हो गए थे। अबीर सिंह राठौर ने वीर रायचंद को अपने ही फार्म हाउस के बाहर लटकाया हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे, साथ ही साथ उसके जिस्म पर बम बंधे हुए थे। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया वहां गया, वो हैरान था कि अमरेश अबीर सिंह राठौर के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। अब अरमान ने जैसे ये देखा, वो पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि वो चाहता था कि अमरेश उसके सामने इस तरह से झुके, अबीर सिंह राठौर के सामने नहीं। अब जैसे ही अबीर ने अरमान को वहां देखा तो तुरंत एक ही झटके में खड़ा होकर अरमान के सामने खड़ा हो गया था और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला,
ओहो, तो फाइनली मिस्टर अरमान सिंघानिया आप यहाँ आ ही गए। रियली मुझे तो लगा था कि तुम रात को ही यहाँ अटपकोगे। चलो खैर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी तक तुम्हारे सौतेले भाई की जान नहीं गई है। अब जैसे ही अबीर सिंह राठौर ने ये बोला, अरमान के खून में आग लग गई थी, क्योंकि वो भी वीर रायचंद से बेहद नफरत किया करता था, और वीर से नफरत करने का रीजन थी वसुंधरा और साथ ही साथ अमरेश रायचंद। लेकिन इन सब में वीर की कोई गलती नहीं थी, ये बात सब जानते थे। वीर अमरेश और वसुंधरा का बेटा था, उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ यही थी। अरमान ने एक नज़र गिड़गिड़ाते हुए अमरेश की ओर देखा और अगले ही पल वीर की तरफ देखा, जिसके पूरे जिस्म पर इस वक्त काफी सारे बम बंधे हुए थे। तभी अरमान ने अबीर की ओर देखकर कहा, छोड़ दो उसे। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, वीर के माथे पर बल पड़ गए थे और अबीर अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, अंदर का भाई जाग गया क्या जो अपने सौतेले भाई को छुड़ाना चाहते हो?